गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहरला, एक सेवा कर संत की गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है सभी है और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या है? फिर ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है, उस तरीके को उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहां, तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का और मोटर ली रख और फिर देख वो बैठा बैठा देख कर वो कट 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 काट रही है, उठा उठा के उसमें रखने रखने, जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत आसानी से रखी जाएगी और फिर देखना आप भी बैठियो अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं, परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी, वो मोटर मिल जाएगी जो उसने घुमाएगी चलाएगी अपने आप, तो वो काम भी हल्के होंगे जिनको हम नहीं कर सकते उसको पावर करती है। तो इस प्रकार वो साधना वो विधि जिससे उस पावर की यानी परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपकी संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले, तो वो दास आपको बता रहा है और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और जिस कारण से हम भगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना ही संघर्ष, उतनी समस्या हमारे घरों पर शरीर पर बनी रही, क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं और जहां से हमने कनेक्शन ले रखा था उनका पीछे से कहीं पावर हाउस से कनेक्शन नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे, वो नकली थे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया, जैसे एक पत्ता टहनी से टूट कर नीचे गिरता है और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है, पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब उदाहरण दे रहे हैं भगवान कबीर परमात्मा आप जी और हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि आप जिस भरे पूरे परिवार से जब यहां से चलोगे मृत्यु का समय निकट आएगा, किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई रोगी हो जाता है, साध्य रोग हो गया, कैंसर होगी या कोई और बीमारी होगी, परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहा वो प्राणी, तो वो मरते समय ये कहा करे हे भगवान ये पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी स्थिति बहुत भयंकर होती है, उसकी ममता उसकी जकड़ उसी परिवार में जकड़ी रहती है। जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होता है वो वहीं फिर पशु पक्षी बनकर कुत्ता कुतिया बनकर उसी गली में सैर सपट्टे करता रहता है। जहां आशा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई पात जड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। अब परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी सुरती भी कहते हैं एक संबोधन के लिए। कहते हैं प्यारी आत्मा जब तू पूरे परिवार ने छोड़ कर अकेली यहां से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा के पत जड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। जब पत जड़ आती है बसंत ऋतु आती है उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो बन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहां एक वर्ष तक मस्ती मार रहे थे फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं, ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाएंगे इन बुढ़ा हो गए बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए जड़ दांत अब चली एक एक करके निकलन लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे अप्रोक्सीमेशन कि 90-80-100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं। अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आज तक जीवित है रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक है हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसलिए तो टिका हुआ है ना। तो ये फिर भगवान में दृढ़ता लग जाए इसलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं या भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े ये अचरज किया कौन और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया यह गफलत किया बैठा इसी कारण से तुम चोरी करता है बकवाद करता है डाके मारता है बिलावट करता है रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीड़े हो जाई पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर राय अब के भी थोड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से अब जैसे तो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं भाई यहां तो सभी ने जाना है चिंता कर ले चाहे ना कर ले। ये बाकी बच रहे, इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पहले से ही परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई पशुओं के पैरों नीचे कटके नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10-15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता वो पेड़ है। और फिर वो जो पत्ते नए आए हैं, वो एक वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फट फट कर लेंगे, फिर वो ऐसे ही स्थिति में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर के तपात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह है रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कटकी, पोता तैयार हो गया, अब 50-60-70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहां जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहां तुम्हें सर्व सुख होंगे, वहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है, क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहां की व्यवस्था बताते हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहां कुछ भी कोई नहीं है, अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई, जहां कुछ भी नहीं है कैसे रुचि बनेगी वहां जाने की। कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, कोई बात भैया है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यार नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा, यहाँ का एज इट इज सृष्टि है, लेकिन वहां का जो मटेरियल है, वहां का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहां से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है, इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पिषियों को, ये तब बहुत नीचे सतर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है, वहां पर इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठाकर, इन साइंटिस्ट ने सिर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है, ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट और भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते, अन्यथा इसकी कति जरूरत नहीं थी। इससे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारे दिन फुर, शांति एक पल की भी नहीं। जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती, ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना। अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज्यादा है उतने ज्यादा अंगारे उसके पास है, कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहां भक्ति है परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष विलसी और लातों छिड़िया सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी दास नहीं पीता था उसे बता रहा हूं, बीड़ी बैड़ी कभी नहीं पी, लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट लाकर टोर दिखाया करते थे, मांस खाते थे और सौ तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे, ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो विष्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला उसका तो एस्टीमेट नहीं लगा सकते एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम 20-30 रुपए डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टीमेट लगाऊं तो 1000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो एस्टीमेट नहीं, एक महीने में 10000 पी जाए, 15000 का नाश कर दे। ऐसे जो हम लोग दिखावा और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी, थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी, अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उनका जानकार था। उसने देखा जल्दी भाई इतनी पीड़ा है, तो कोई उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी, पीड़ा जो की तो बनी रही, जब वो पेन किलर बंद करी तो फिर जो की तो पीड़ा, फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। उसने क्या देखा कि इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी, फिर पीड़ा जो की त्यों बनी रही, फिर लास्ट में पता चला कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहां से चला था लाखों रुपये लागे, ब्रांड मटीनों की नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची और 2-3 महीने तक ऐसे ब्रांड मटी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे पुणात्मा, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं, पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटकर मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, तभी इस मार्ग को परमात्मा के मार्ग को उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको, ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है, तो वो सर्व सुखदायी परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला है सर्व सुखदायी। अब ये सुख ही सुख देगा, यहां दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है, वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्मी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले गर्मी के दिनों में एसी ला गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा, यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम उस स्थान को भूल गए जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, और हम सभी पहले वही रहते थे। अब कई भक्त अज्ञानतावश भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ये प्रश्न किया करते कि एक बात बता, जब सारे ही यहां से चले गए तो यहां कौन रहेगा बता। वो नैया चिंता हो रही है कि यहां कौन रहेगा बता। अरे यहां यू तो एक पत्थर है, घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखा है पृथ्वी का। ये मंगल ग्रह जो चांद और ये सारे धक्के खाने लग रही है, फिर जागा हम अपने सतलोक में चलेंगे, इसकी हमने क्या क्या करना है, ये तो जिसका हुआ आप संभालेगा इसने। तो कहने का भाव ये है कि हम इतने रंग गए यहां पर। जैसे एक भक्त बोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, बहुत समस्या में थी, हर तरह से तकलीफ थी, परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भक्त, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, झोटा बनेगा। वो झोटा बुग्गी ले रहा था, उससे कहा भाई फिर झोटा बनेगा तू तो नहीं। बोला महाराज जी, झोटा भी दबड़ना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा इसने बुग्गी की चिंता हो रही। मैं कहा अच्छा भाई, तो बुग्गी खातिर कर ले काम। फिर उसे उपदेश ले लिया उसने, लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहां ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें हजार लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिले, एक जन्म की जब बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आके हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है हम इसके बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है? किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर गधे कुत्ते बनकर बिस्टा खा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है? तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं? यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के, वो भी बच्चे परमात्मा के वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लग गए। भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो वो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। फिर पता चला कि ये तो भाई गलत कर रहे सारा काम, ये तो आसपास भी नहीं सदग्रंथों के, एक दो तीन चार दस सैकड़ों की संख्या में इन संतों के इतिहास को, इनके ज्ञान को दास ने पढ़कर देखा, शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जावे। फिर जो चले गए यहां से महापुरुष, जिनका बड़ा बोलबाला था, ये मैं सिद्धानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास, और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से, इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद, पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, ये सोचकर रख देते थे इसको, ऐसे इन पुराणों को रख देते थे, भाई ये तो भगवान की माया है, हम कैसे समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो अंखियां बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की, तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं, और परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घनी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो महर्षि दानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदग्रंथों से, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि ये ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ तो ओरिजिनल नोट है और ये डुप्लीकेट नोट है इन संतों के जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया तो जो जैसा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए, उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई, ओरिजिनल ऐसा होता है डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते जिनके 5-7 हजार रुपए होते, रुए ठग नकली कागजों में लग जाते। तो पुण्यात्माओं, दास का यही प्रयत्न समझ लेना, ये पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। ठीक है, दास को बहुत कठिनाइयां आई हैं, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींचकर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खाचे में कीचड़ में डाल रखी थी और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहां तक ये संदेश भगवान का पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया है। और आपका भी फर्ज बनता है, यह सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और सर्व ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ, तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा के जोर जबरदस्ती ना करना, कल युग में जब आप ले जाओ अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें वो आपके हो जाए और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जाए, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना अपना आत्मा, परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, अगर वैसे भी ले जा तो वहां टके नहीं है, फिर आऊंगे वापस, पहले वही ना रहा करते, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए और वो क्या कहते हैं, नहर के किनारे लौट के शांति प्राप्त करते हैं, उन कोठिया ने रूम सारे इंस्ट्रूमेंटा ने छोड़ गए, तो ये पहले हमारे अंदर ही रहेंगे, क्यों शर्म दर्द कराया वो बीमारी इकट्ठी करी। तो ऐसी शांति होनी वही है, ये तो एक उफान है इस काल का डाला हुआ, ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा, टट्टू सुख होगा। सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों के से बचाव होगा, उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं, और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना, वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो तीन प्रकार से, तीन प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों को, सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनुष्य सदृश परमात्मा, नर नारायण देह है, ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है, हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा एक परमात्मा, तो अपने आप दो हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा एक आत्मा, सिंपल। तो ऐसे एक राजा एक मनुष्य, एक नागरिक है एक राजा है, सकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों है, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है, एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्वगुण है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर, वो सबका बरातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, और फिर तुम वहां चलो तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो तीन प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में तीन प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है वह, जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है स्थाई रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोम कूप में इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो, और तकत पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते हैं, प्रत्येक युग में ऐसी लीला। और फिर वो कुंवारी गायों का दूध पीता है, कुंवारी गायें दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी प्रवेश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कुंवारी गायों में दूध कहां से आता, सतलोक से आता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में वहां से गति करके आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता, उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं, और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे, जो उनको कह दिया दाता ने वो फाइनल उनके लिए, सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बाला वाली में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी, और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुन्द्र में, घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी भी सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने, समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जिसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती चाहे वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ, अब गुरु ग्रंथ साहिब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के, खबरदार दे, इस नाम का जाप किया, मर्दाना ने किया था मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए, क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे, वो जान ही जान थे कि आग लग जाएगी, जय मंत्र दे दिया था नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है, बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं, ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहां दास देख रहा है कि यहां विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहां उनका लंगर चलता है, ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस, ये एक तो धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता असंग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो डेली, एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कि गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सुख संवेद में कि धर्म तो दस के नहीं, और दस के तीनों लोक, खैरायत में खैर है कि जय आत्म को। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है, ये ग्लूकोस है, एक रोगी है। जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है, और उन महापुरुषों ने क्या किया कि इस पूरे मानव समाज का ग्लूकोस लगा दिया। ग्लूकोस जो होता है ये रोग नहीं नाश करता, ये शरीर को नष्ट होने से बचाता है, पानी की अक्षति पूर्ति करता है। जैसे सर्जन यानी डॉक्टर कई बार गया हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाते हैं, ये कंपाउंडर और दूसरे उनसे पूछते हैं जी ऐसे ऐसे मरीज है क्या करें, तो कहता है इसको ग्लूकोज लगा दो और ये इंजेक्शन लगा दो, तब तक मैं आता हूं। तो वो घंटे दो घंटे या अगले दिन भी आता है, तो वो ग्लूकोज लगाने से वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता, और आके फिर वो चेक करके उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर देगा, रोग कटेगा उस डॉक्टर के उस ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से जो भी वो चाहेगा सर्जरी से, ग्लूकोज उसकी रक्षा करती रही, शरीर का नाश नहीं होने दिया। तो इस मानव समाज को वो महापुरुष ग्लूकोज लगा के इन यज्ञों का ओनली बस ये ट्रीटमेंट नहीं दिया उसमें, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, वो डॉक्टर बनाकर वो सर्जन बनाकर और आदेश दे दिया, उनको मना कर दिया था सतनाम नहीं देना, दास को आदेश दे दिया कि अब दे सतनाम और दे दे सार नाम, समय आ गया पिछली पीढ़ी का, बोलो सतगुरु दे। तो पुण्यात्मा जो प्रश्न चल रहा है कि इन दृढ़ आत्माओं ने परमात्मा के प्रत्येक आज्ञा का पालन कर लिया, अब जैसे बात चली है कि ज्ञान देकर ही आप ले जाना अपने बच्चों को, आपका ज्ञान स्वीकार करें आपका। अब जैसे परमात्मा मिले थे हजरत मोहम्मद को जिससे मुसलमान धर्म चला, अब वो अच्छी आत्मा थी लेकिन दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा थी दृढ़ भक्त नहीं थे वो। अब यहां उनके लाखों शिष्य हो गए थे, परमात्मा उनको आए मिले, जैसे वो अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर में खोजता फिरूं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हजरत मोहम्मद जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को कहते हैं हम वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम हजरत मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे नानक साहिब जी को ले गए, गरीबदास साहिब जी को ले गए, चित्रमदास साहिब जी को ले गए और गीसादास साहिब जी को, दादू साहिब जी को ले गए, मुल्कदास साहिब जी को लेकर गए, फिर छोड़ दिए। उन्होंने दृढ़ होकर के भगवान की प्रत्येक बात को स्वीकार किया, उन्होंने तो वहीं कह दिया था भगवान हमें यहीं रख लो, लेकिन हजरत मोहम्मद वहां नहीं रहे अपनी मर्जी से, मैं बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूं और वहां भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ राहत दे देते हैं। उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो काल तक सीमित थे, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी नमाज करो, 50 नमाज करने की कही थी, फिर दोबारा प्रार्थना की कुछ कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी, लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा मीन बर्थ और बंग आवाज लगाना, हे भगवान दया करियो आवाज लगाकर आप ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहां से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थाई चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थाई नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में, इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है वह इतनी, ये सिद्धियां असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहां से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी, तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लग गया, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से, सब खुशी हुई, सब जगह ये लहर दौड़ गई के भैया हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे, उन्होंने कहा भी हम जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मुर्गी। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे एक सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जो आई और तब मोहम्मद के निश्चय आई, वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया, तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। कहते जब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर आसमान के अंतिम छोर पर, अरस कुरस पर अलह तकत है, उस परमात्मा का स्थान है जहां कबीर साहब का अपना स्थान है, और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी है, उससे कोई बचा नहीं है, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गौ मार रहे हो, जो मनाते हो वो दिन विशेषकर गौ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी, तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे, और शब्द फिर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख अपे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं, अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी, तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे, और परमात्मा के नबी कहलाए, और 180 को सौगंध, कसम है उन 180,000 मुसलमान बने थे दौड़ के, सीधे से थे, उन्होंने कर चलाया, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श कुरस पर अल्लाह तक है खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहां ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान स्वभावश, लेकिन वहां नहीं रहे, और ये देख कोड कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहां पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, क्या बताया, मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। आदि गिरिदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को और गरीबदास जी नागे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ही संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी वो चाहते थे इसमें संशोधन कर दे थोड़ा सा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया, संत को आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई, दास 20-37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में यो नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था और फिर वह जाने लगे जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमर वाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता है सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना, एक ने एक दो ने ऐसे किया था वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहां की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहां की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा, जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है, वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है? और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान, अर्जाम सतलोक ये फूटे भाग तरे टिकट तले रहे हैं पर्ची तक कटवारे लोग कलवस की, और जाना था हमने सात समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी वह उनके पास नहीं, और बात करने होगा हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तय ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन्हों के जहाज की हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहां से सतलोक जान की टिकट है, और सार नाम फिर इस पर दुर्गा पंच लग जाएगा, ले बात बनगी, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहां तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, पांच तत्व तीन गुण से ये नासवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नासवान है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है, जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है और बाकी ये सभी नाशवान है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नाशवान और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में दो पुरुष बताए हैं, वो दोनों नाशवान, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब सथूल, इनका नाशवान है, जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदारते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं देके और सुख सुख देता है, और जहां गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे या काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है,